एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द और उसके पीछे की दुनिया की पड़ताल करेंगे जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है, प्यूरिटन।
बिल्कुल, मतलब जैसे कोई प्यूरिटन कहता है मेरे दिमाग में तो बस वही काले कपड़े पहने,
हाँ, हर तरह की खुशी के दुश्मन,
हाँ, बेहद सख्त और एकदम बोरिंग लोग,
हाँ,
एक ऐसी छवि जो मतलब हर फिल्म या कहानी में दिखाई जाती है।
सही बात है,
पर सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर पूरी है या बस एक अधूरा सा कैरिकेचर?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब है कि नहीं, ये तस्वीर बहुत अधूरी है। आज हम इतिहासकार फ्रांसिस जे ब्रेमर के काम की मदद से इस कैरिकेचर के पीछे छिपे असल इंसानों को समझने की कोशिश करेंगे।
अच्छा।
हम देखेंगे कि प्यूरिटनवाद असल में इंग्लैंड और अमेरिका के इतिहास को बदलने वाला एक बहुत शक्तिशाली और जटिल धार्मिक आंदोलन था।
और ये सिर्फ इतिहास का एक सूखा पन्ना नहीं है, ये आज भी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि काम, समाज और निजी जिम्मेदारी को लेकर उनके जो विचार थे वो आज भी पश्चिमी दुनिया की सोच को अनजाने में शक्ल दे रहे हैं। तो चलिए इस आम धारणा की परतें हटाकर देखते हैं कि सच्चाई क्या है।
इस चर्चा के लिए हमारी बुनियाद फ्रांसिस जे ब्रेमर का काम है, और ये जान लेना जरूरी है कि ब्रेमर कोई आम इतिहासकार नहीं है।
अच्छा।
उन्हें 17वीं सदी के प्यूरिटनवाद पर दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक माना जाता है।
तो इनकी खासियत क्या है? मेरा मतलब है, इतने सारे इतिहासकारों ने इस पर लिखा है तो ब्रेमर का नजरिया अलग कैसे हुआ?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ब्रेमर की जो खासियत है वो ये है कि वो प्यूरिटन लोगों को सिर्फ राजनीतिक घटनाओं या
आंकड़ों से नहीं देखते।
बिल्कुल, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक उनकी लिखी हुई निजी डायरियों, चिट्ठियों, कविताओं और धर्मोपदेशों को पढ़ने में बिताए हैं। वो उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करते हैं।
मतलब एक इंसान के तौर पर उनके डर क्या थे, उनकी उम्मीदें क्या थीं?
हाँ, और उनका भगवान के साथ रिश्ता कैसा था?
मतलब वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये भी कि उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया।
एकदम सही। उनका लक्ष्य हमें प्यूरिटन लोगों से जटिल, भावुक और कभी कभी विरोधाभासी इंसानों के रूप में मिलवाना है, ना कि सिर्फ सख्त नियमों वाली एक छवि दिखाकर छोड़ देना।
तो ब्रेमर की किताबों का सार क्या है? उनका मुख्य तर्क क्या है?
ब्रेमर का सबसे बड़ा तर्क यह है कि प्यूरिटनवाद कोई एक अकेली पत्थर की लकीर जैसी विचारधारा नहीं थी। ये प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर एक बहुत ही विविध और अंतर्राष्ट्रीय सुधार आंदोलन था। और ब्रेमर उन्हें एक बहुत दिलचस्प नाम देते हैं, The hotter sort of Protestants.
The hotter sort of Protestants, मतलब ज्यादा जोशीले Protestants.
हाँ।
ये सुनते ही वो बोरिंग वाली छवि तो एकदम टूट जाती है, इसमें एक जुनून सा लगता है।
सही कहा, उनका जुनून था इंग्लैंड के चर्च को उन सभी चीजों से शुद्ध करना जो उन्हें कैथोलिक धर्म की विरासत लगती थी, और बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श समाज बनाना था।
और ये सफर 16वीं सदी के इंग्लैंड से शुरू होकर हमें अमेरिका में एक नया समाज बनाने की उनकी बड़ी और जोखिम भरी कोशिश तक ले जाता है।
बिल्कुल, और इसी कोशिश में उन्होंने हार्वर्ड जैसे कॉलेज बनाए, शहर बसाए,
लेकिन सेलम विच ट्रायल्स जैसे भयानक संकटों का सामना भी किया।
हाँ, और ब्रेमर का उद्देश्य उनकी तरफदारी करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी अपनी दुनिया और उनकी अपनी शर्तों पर समझना है, उनकी असाधारण सफलताओं और उनकी भयानक गलतियों दोनों को स्वीकार करते हुए।
तो चलिए उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। वो असल में मानते क्या थे? मैंने सुना है कि उनका सबसे मुख्य और विवादास्पद विचार प्रीडेस्टिनेशन का था।
हाँ, प्रीडेस्टिनेशन, यह धारणा कि ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही तय कर लिया है कि किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं।
ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान कोशिश ही क्यों करेगा? उसे तो बस हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना चाहिए।
यही तो सबसे दिलचस्प बात है, हुआ इसका ठीक उल्टा।
अच्छा।
निष्क्रिय होने के बजाय लोग अपनी जिंदगी में लगातार उन संकेतों की तलाश करने लगे जिनसे ये साबित हो सके कि वे चुने हुए लोगों में से हैं।
कैसे संकेत?
जैसे मेहनत से काम करना, व्यापार में सफलता, एक अनुशासित परिवार, ये सब इस बात का सबूत माना जाने लगा कि ईश्वर की कृपा उन पर है। इसने उन्हें, आप कह सकते हैं, अंखोलाबल मोंत प्रेरित और बेचैन दोनों बना दिया।
ये सोचना है कितना तनाव भरा लगता है कि आपकी हर सफलता या विफलता को एक दैवीय संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
बिल्कुल, और खुद में ईश्वर की कृपा के संकेत ढूंढने का यही दबाव उन्हें उनके दूसरे बड़े विचार की ओर ले गया, कवनेंट।
कवनेंट यानी समझौता?
हाँ, एक पवित्र समझौता। और ये सिर्फ उनके और ईश्वर के बीच का मामला नहीं था, ये पूरे समाज को एक साथ बांधने वाला गोंद था।
इसका क्या मतलब है? ये समझौता किस तरह का था?
ये दो स्तरों पर था। व्यक्तिगत स्तर पर तो एक इंसान और ईश्वर के बीच का पवित्र रिश्ता था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था सामाजिक कवनेंट। वे मानते थे कि पूरे समुदाय का, जैसे मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का, ईश्वर के साथ एक राष्ट्रीय समझौता है। अगर वे सब मिलकर ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे तो समुदाय फलेगा फूलेगा, लेकिन अगर वे रास्ते से भटके तो ईश्वर उन्हें सजा देगा।
बीमारी, अकाल या युद्ध के रूप में?
बिल्कुल। यानी निजी नैतिकता और सामाजिक समृद्धि सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर किसी का व्यवहार पूरे समुदाय के भविष्य को प्रभावित कर सकता था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
बहुत बड़ी।
और इसी समझौते को गंभीरता से लेने के लिए जरूरी था कि धर्म सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो। और यही उनका तीसरा बड़ा विश्वास आता है, कन्वर्जन एक्सपीरियंस,
धर्मांतरण का व्यक्तिगत अनुभव।
हाँ, ये सिर्फ ये कहना काफी नहीं था कि मैं ईसाई हूं। जरूरी थी एक गहरी भावनात्मक और जीवन को बदल देने वाली अनुभूति, एक ऐसा पल जब किसी व्यक्ति को ये गहराई से महसूस हो कि ईश्वर ने उसे चुना है।
ये एक रूहानी घटना थी।
एकदम। और न्यू इंग्लैंड के चर्चों में इस निजी अनुभव को सबके सामने साझा किए बिना कोई चर्च का पूरा सदस्य नहीं बन सकता था।
तो ये जोशीला आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ, पर अमेरिका कैसे पहुंचा?
जब इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम और आज बिशप विलियम लॉर्ड ने चर्च पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया और प्यूरिटन सुधारों को उलटने की कोशिश की, तो कई प्यूरिटन लोगों को लगा कि इंग्लैंड अब सुधर नहीं सकता।
उन्हें लगा कि देश अपने कवनेंट को तोड़ रहा है।
हाँ, और इसी निराशा में उन्होंने एक नया रास्ता चुना। 1630 के दशक में, जिसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है, उसमें लगभग 20,000 प्यूरिटन एक पवित्र प्रयोग करने के लिए अमेरिका चले गए।
एक पवित्र प्रयोग?
हाँ, पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नहीं गए थे, जैसा हम आज समझते हैं, मतलब जहाँ हर किसी को कुछ भी मानने की आजादी हो,
बल्कि वे अपनी मान्यताओं के अनुसार एक आदर्श समाज बनाने की स्वतंत्रता के लिए गए थे।
एकदम सही। और इसी सपने को उनके नेता जॉन विंथ्रोप ने एक यादगार भाषण में बयां किया। उन्होंने अपनी नई बसावट को सिटी अपॉन अ हिल कहा,
पहाड़ी पर बसा शहर।
हाँ, जिसका मतलब था कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर हैं। ये कोई घमंड का बयान नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी के एक भारी बोझ का एहसास था। अगर वे असफल हुए तो वे पूरी दुनिया के सामने अपने ईश्वर के नाम को शर्मिंदा करेंगे।
लेकिन इतने बड़े आदर्शों के साथ चलने वाले समाज में भी तो मुश्किलें आई होंगी। क्या सब लोग हमेशा एकमत थे?
बिल्कुल नहीं। इस आदर्श समाज में बहुत जल्द दरारें दिखने लगीं। रोजर विलियम्स जैसे धर्मगुरु को समुदाय से निकाल दिया गया।
क्यों?
उनका मानना था कि सरकार को चर्च के मामलों में कोई दखल नहीं देना चाहिए और चर्च को सरकार के मामलों में भी नहीं। आज हमें ये बात सामान्य लगती है, पर उस समय ये एक बहुत ही खतरनाक विचार था।
और एन हचिनसन का मामला तो और भी ज्यादा चर्चित है ना?
हाँ, एन हचिनसन एक बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने स्थापित पादरियों के अधिकार को ये कहकर चुनौती दी कि मोक्ष व्यक्तिगत आस्था से मिलता है, न कि अच्छे कामों से। ये उस समाज के पूरे ढांचे के लिए एक सीधा खतरा था और उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया।
तो ये मामले दिखाते हैं कि व्यक्तिगत विवेक और सामुदायिक अनुशासन के बीच हमेशा एक गहरा तनाव बना हुआ था।
हमेशा। और समय के साथ ये आदर्श समाज कमजोर पड़ने लगा। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में वो पहले जैसा धार्मिक जोश नहीं रहा।
और फिर युद्ध और राजनीतिक मुश्किलें भी थीं।
हाँ, और फिर 1692 में वो हुआ जिसने पहाड़ी पर बसे शहर के आदर्श पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा लगा दिया, सेलम विच ट्रायल्स।
सलेम की घटना को अक्सर सिर्फ अंधविश्वास का नतीजा मान लिया जाता है। ब्रेमर इसे कैसे देखते हैं?
ब्रेमर इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह देखते हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, इसमें राजनीतिक अनिश्चितता थी, पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिशें थीं और एक गहरा धार्मिक डर था कि शैतान वाकई उनके बीच आ चुका है
और उनके कोविनेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल। जब एक डरा हुआ समाज बलि का बकरा ढूंढता है तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, सलेम इसका सबसे दुखद सबूत है।
इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें उस नीरस कट्टरपंथी वाली छवि से आगे देखना होगा। मैं तो हैरान थी कि वे रंगीन कपड़े पहनते थे, बियर पीते थे और वैवाहिक प्रेम को ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार मानते थे।
बिल्कुल। उन्हें मौज मस्ती से कोई परहेज नहीं था। उनकी आपत्ति ऐसे आनंद से थी जिसमें ईश्वर को भुला दिया जाए। वो पार्टी के खिलाफ नहीं थे, बस ये चाहते थे कि पार्टी में भगवान को भी न्योता दिया जाए।
दूसरा मुख्य विषय जो मुझे समझ आया वो है इस आंदोलन के भीतर की विविधता। प्यूरिटनवाद कोई एक चीज नहीं थी।
सही बात है, इसमें नरम सुधारकों से लेकर कट्टरपंथी तक शामिल थे, जो अक्सर आपस में भी सहमत नहीं होते थे, और यही विविधता उन्हें इतना गतिशील बनाती है।
और तीसरा थीम जो मुझे लगता है आज भी बहुत प्रासंगिक है, वो व्यक्ति और समुदाय के बीच का वो तनाव है।
हाँ, वो शाश्वत तनाव। वे ईश्वर के साथ गहरे व्यक्तिगत रिश्ते पर जोर देते थे, लेकिन साथ ही एक अनुशासित, एकजुट समुदाय भी चाहते थे।
ये खींचतान तो आज भी हमारे समाजों में मौजूद है, व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष।
और चौथा संदेश है कोविनेंट की शक्ति। ये विचार कि समाज डर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच एक स्वैच्छिक समझौते पर आधारित होना चाहिए, ये आधुनिक लोकतंत्र की नींव में मौजूद है।
ब्रेमर के काम में कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। पहला तो वही है, प्यूरिटन को एक सिद्धांत के बजाय ज्यादा जोशीले प्रोटेस्टेंट्स के रूप में सबसे अच्छा समझा जाता है।
ये उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि सिर्फ नियमों की एक सूखी सूची पर।
यह उनके क्यों को समझाता है, सिर्फ क्या को नहीं।
दूसरा, जॉन विंथ्रोप का वो विचार, हम एक पहाड़ी पर बसे शहर की तरह होंगे और सबकी नजरें हम पर होंगी।
जैसा आपने पहले कहा, ये सुनने में घमंड जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी का एक भारी बोझ था।
हाँ, कि उनकी असफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि दुनिया के सामने उनके ईश्वर की असफलता मानी जाएगी।
और तीसरा विचार जो उनके पूरे जीवन के नजरिए को समेटता है, उन्हें दुनिया में रहना था लेकिन दुनिया का नहीं होना था।
ये उनके वर्क एथिक की सबसे अच्छी व्याख्या है। काम करना, परिवार चलाना, समाज में हिस्सा लेना, ये सब उनके लिए ईश्वर की सेवा करने के ही तरीके थे। इसने उनके रोजमर्रा के कामों को भी एक पवित्र मकसद दे दिया।
तो सवाल ये है कि 400 साल पुरानी इन बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है, इन्हें हम अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं।
पहला और सबसे स्पष्ट है आधुनिक संस्कृति की जड़ों को समझना, चाहे वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का विचार हो या फिर काम के प्रति समर्पण का वर्क एथिक। इन सब की डीएनए में कहीं ना कहीं प्योरिटन विचार मौजूद हैं।
दूसरा, ये काम के प्रति हमारे दृष्टिकोण को एक नया नजरिया दे सकता है, कॉलिंग का विचार, कि हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि समाज में योगदान देने का एक अवसर भी हो सकता है।
और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक चेतावनी भी है। सेलेम बीच ट्रायल्स हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जब कोई समुदाय खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ मानकर डर और उन्माद का शिकार हो जाता है तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं।
ये समूह सोच और बलि का बकरा बनाने के खतरों के बारे में एक कालातीत सबक है जो आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा में सबसे कमाल की बात ये थी कि कैसे उनकी कंग्रीगेशनल वोटिंग जैसी धार्मिक प्रथाओं ने अनजाने में लोकतंत्र के बीज बो दिए। वे एक थियोक्रेसी बनाने निकले थे,
पर उनके चर्च चलाने के तरीके ने जहां सदस्य मिलके वोट करते थे, लोगों को लोकतांत्रिक आदतों की ट्रेनिंग दे दी। वे एक चीज बना रहे थे पर नींव किसी और ही चीज की पड़ रही थी।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास हमेशा उन सपाट छवियों से कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय होता है। ये जोशीले, बुद्धिमान लेकिन गहरी खामियों से भरे लोग थे जो अपने विश्वासों के आधार पर एक बेहतर दुनिया बनाने की सच्ची कोशिश कर रहे थे। उनका संघर्ष हमें अपने संघर्षों को समझने में मदद करता है।
ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की हमारी दुनिया में, जो अक्सर बहुत बटी हुई और उद्देश्यहीन लगती है, हमने उस साझा उद्देश्य की भावना के लिए कोई सार्थक विकल्प ढूंढा है जिसने प्यूरिटन लोगों को अच्छे और बुरे दोनों के लिए इतनी दृढ़ता से प्रेरित किया था।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।